नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के कल से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। सरकार ने संसद के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में भारत में पहली बार हो रही विश्व धरोहर समिति की बैठक का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से 3 तीर्थयात्रियों की मौत, 5 घायल। समाज में शिक्षकों और आध्यात्मिक गुरुओं की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करने के लिए आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। श्रीलंका के दाम्बुला में महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में भारत के साथ संयुक्त अरब अमीरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। और स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज राफेल नडाल का सामना नूनो बोर्गेस से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। संसद के बजट सत्र से पहले आज नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक सम्पन्न हो गई है। इस दौरान सरकार ने संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जगत प्रकाश नड्डा, चिराग पासवान, रामदास आठवले और कांग्रेस नेता जयराम रमेश और गौरव गोगोई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल, डीएमके नेता टीआर बालू और तिरुचि शिवा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के असदुद्दीन ओवैसी सहित कई अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर सांख्यिकीय जानकारी और विश्लेषण प्रदान करता है। वित्त मंत्री मंगलवार को लोकसभा में वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि ये बजट सरकार की दूरगामी नीति और भविष्यवादी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। सरकार इस सत्र में 6 नए विधेयक पेश कर सकती है। इनमें आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, बॉयलर विधेयक, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक और रबर संवर्धन और विकास विधेयक शामिल हैं। सुपर्णा शेखिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह।
केंद्रीय बजट 2024-25
आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट 2024-25 पर होगा विस्तृत विश्लेषण।
सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर प्रतिक्रियाएं और विशेष साक्षात्कार।
बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक 23 जुलाई मंगलवार सुबह 9 से रात 10 बजे तक 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड पर।
इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एयर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी गणमान्य अतिथियों को संबोधित भी करेंगे। भारत पहली बार इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। विश्व धरोहर समिति की बैठक वर्ष में एक बार होती है। समिति विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन करने के साथ विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों का निर्णय भी करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत के विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी करना हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि ये देश की विरासत के संरक्षण के लिए विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मंच है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस बैठक के माध्यम से दुनिया भर को भारत में हुए विकास को दिखाने का अवसर मिलेगा।
दुनिया भर से आने वाले डेलीगेट्स को हमें भारत की विरासत का रखरखाव जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार कर रही है, इसको शोकेस करने का अवसर मिलेगा। हम अपनी विरासत को किस तरह से प्रधानता दे करके उसके साथ में देश को जोड़े रहने के लिए, आम जनमानस को जोड़े रहने के लिए काम कर रहे हैं, इसको दिखाने का अवसर तो मिलेगा ही। साथ ही साथ में भारत ने जिस तरह से विकास किया है, उस विकास को भी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी, भारत के टूरिज्म क्षेत्र में हुए डेवलपमेंट को भी और भारत के डिफरेंट मॉडर्न साइंसेज के सेक्टर में हुए डेवलपमेंट को भी दिखाने का निश्चित ही एक अवसर हम सब लोगों के पास में होगा।
महाराष्ट्र में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक दिन का सम्मेलन आज पुणे में हो रहा है। इसमें 5,300 से अधिक पार्टी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। बैठक के समापन सत्र में गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 व्यक्ति राजस्थान के भरतपुर चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं। गिरफ्तार किया गया तीसरा व्यक्ति पेपर लीक सरगना को हर तरह की सहायता उपलब्ध करा रहा था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
साइबर अपराधियों से सावधान। शेयर मार्केट से तुरंत पैसे बढ़ाने, घर बैठे पैसे कमाने जैसे लालच देकर, या फिर नकली पुलिस, सीबीआई, कस्टम अधिकारी बनकर, सिम या बिजली बंद होने की धमकी देकर, या फिर अनजाने नंबरों से वीडियो कॉल करके साइबर अपराधी आपको शिकार बनाते हैं। सतर्क रहें। शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर, या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को।
गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आज सुबह केदारनाथ मार्ग पर छिदवासा के निकट भूस्खलन में 3 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और 5 घायल हो गए। मृतकों में 2 महाराष्ट्र के हैं और 1 स्थानीय निवासी है। ये श्रद्धालु गोरीकुंड से केदारनाथ जा रहे थे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल और स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही बचाव अभियान शुरू कर दिया है। घायल श्रद्धालुओं को उपचार के लिए रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए घायलों को तुरंत हर प्रकार के चिकित्सा सेवा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा में अब तक 3,86,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। ये यात्रा इस वर्ष 29 जून से शुरू हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा का 23वां जत्था आज तड़के 3,113 यात्री जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 123 वाहनों के 2 सुरक्षा काफिले में कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए। इस वर्ष ये यात्रा 52 दिन चलेगी और अगले महीने की 19 तारीख को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 24 घंटों के लिए सूरत, नौसारी, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली, पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका, गिर, सोमनाथ में रेड अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 10 दल तैनात किए गए हैं। नर्मदा, डांग, भरूच, तापी, राजकोट, जामनगर, अमरेली, भावनगर, कच्छ और दीव जैसे जिलों को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन में राज्य में व्यापक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्र में बाढ़ का असर कुछ कम हो गया है। आज सौराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राज्य में कुछ हिस्सों में सामान्य वर्षा हुई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा होने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ और तटीय तथा आंतरिक कर्नाटक, केरल, माहे, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और तेलंगाना में भी आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिन के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। आज गुरु पूर्णिमा है। इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन आध्यात्मिक गुरुओं और आचार्यों को समर्पित होता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं के प्रति अहोभाव प्रकट करते हैं जिन्होंने उनका पथ प्रदर्शन किया और जीवन को नई दिशा दी। भगवान बुद्ध ने संबोधि प्राप्त होने पर बोधगया से सारनाथ की यात्रा की थी और आज ही के दिन अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। इसलिए बुद्ध के अनुयायियों के लिए भी आज का दिन कृतज्ञता ज्ञापन का होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4था स्थान हासिल करने पर गर्व व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय दल ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से युवा प्रेरित होंगे और इससे गणित को और अधिक लोकप्रिय बनाने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री खड़गे आज 82 वर्ष के हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री खड़गे के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को अवैध बताते हुए सिविल सेवा आवेदकों संबंधी विवादित कोटा प्रणाली पर रोक लगा दी है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी छात्रों से कक्षाओं में लौटने का आग्रह किया है। इससे पहले बांग्लादेश के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पूरे देश में झड़पें हुई थी, जिनमें 133 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी नौकरियों को लेकर भड़के असंतोष के बाद सरकार ने देशभर में कर्फ्यू लगा दिया था और देखते ही गोली मार देने के आदेश दिए थे। बांग्लादेश में बृहस्पतिवार से इंटरनेट और एसएमएस सेवा निलंबित हैं और बुधवार से विश्वविद्यालय तथा कॉलेज भी बंद हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने आज बताया कि 3 नेपाली विद्यार्थियों सहित 373 भारतीय विद्यार्थियों ने कल बांग्लादेश से त्रिपुरा में 2 एकीकृत जांच चौकियों को पार कर लिया है। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से चल रहे हिंसक कोटा विरोधी आंदोलन और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण छात्र वापस अपने देश लौट रहे हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए त्रिपुरा फ्रंटियर के महानिरीक्षक पटेल पीयूष पुरूषोत्तम दास ने बताया कि लगभग 300 छात्र सोनामुरा जिले के श्रीमंतपुर एकीकृत चेक पोस्ट से लौटे हैं, जबकि 76 अखोरा चौकी से लौटे हैं। उन्होंने कहा कि 300 छात्रों का एक और जत्था आज देश लौटेगा। और अब खेल जगत की खबरों से खेल डेस्क से।
स्वीडिश ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज स्पेन के राफेल नडाल का सामना पुर्तगाल के नूनो बोर्ग से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले नडाल ने कल क्रोएशिया के डूजे अजियोकोविच को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। बोर्ग्स ने अर्जेंटीना के थियागो अगस्टिन तेरांटे को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बनाई थी। इस बीच स्विस ओपन के पुरुष डबल्स फाइनल में आज युकी भांबरी और अल्बानो ओलिविटी की भारतीय फ्रांसीसी जोड़ी का मुकाबला फैब्रिस मार्टिन और उगो हम्बर्ट की फ्रांसीसी जोड़ी से होगा। ये मैच स्विट्जरलैंड के गस्टाड में भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3 बजे से शुरू होगा। उधर पोलैंड की राजधानी वारसा में ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत की किरण पहल ने महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। किरण ने ये दौड़ 23.33 सेकंड में पूरी की। इस वर्ष किसी भी भारतीय का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस बीच भारत के राजेश रमेश ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसी स्पर्धा में मोहम्मद अजमल तीसरे और मोहम्मद अनस चौथे स्थान पर रहे। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
श्रीलंका के दाम्भुला में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत के साथ संयुक्त अरब अमीरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 ओवर में 3 विकेट पर 52 रन बना लिए थे। इस मैच को जीतकर भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। मेजबान श्रीलंका ने कल बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया था। विश्वमी गुणरत्ने के अर्धशतक की बदौलत श्रीलंका ने 17 ओवर और 1 गेंद में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों की संख्या में इस वर्ष मई में 19,50,000 की वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 के बाद से किसी एक महीने में यह सर्वाधिक वृद्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष मई में लगभग 9,85,000 सदस्य संगठन से जुड़े। ये वृद्धि रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, कर्मचारियों के लाभ के प्रति बढ़ती जागरूकता और संगठन के जनसंपर्क कार्यक्रमों के कारण हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के कल से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। सरकार ने संसद के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में भारत में पहली बार हो रही विश्व धरोहर समिति की बैठक का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से 3 तीर्थयात्रियों की मौत, 5 घायल। समाज में शिक्षकों और आध्यात्मिक गुरुओं की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करने के लिए आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। श्रीलंका के दाम्बुला में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत के साथ संयुक्त अरब अमीरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।